लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेवन से छोटा नागपुर में कार्तिक कलीसिया की शुरुआत पर चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओ, पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स के स्वस्थ होने की उम्मीद और इस उम्मीद के साथ साथ उनकी आध्यात्मिकता में गहराई की ओर बढ़ने की बात सुनी थी। आज हम सुनेंगे कि स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय अपनाया। तो आइए आगे सुनते हैं। फादर लेबन्स ने बेल्जियम के ड्रोनजेन में 1892 से 1893 की शरद और बसंत ऋतु पार की, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके लिए अच्छे दिन थे जब वे चल सकते थे, मिस्सा चढ़ा सकते थे, पढ़ लिख सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे, किंतु बुरे दिन भी आए जब वे खतरनाक रूप से खांसने के कारण थक जाते थे और अत्यधिक कमजोरी महसूस करते थे। कॉन्ट ले ग्रीले, जिन्होंने तोरपा में उनके साथ यात्रा की थी, एक दिन उनसे मिलने आए। फादर लेबन्स की हालत देखकर वे दंग रह गए, हाथों से अपना चेहरा ढककर वे रो पड़े। तब फादर लेबन्स ने अपने मित्र को सांत्वना देते हुए कहा, अब आओ, अधिक उदास मत हो, मैं पहले से काफी ठीक हो गया हूँ, आप देखेंगे कि मैं फिर भारत लौटूंगा। अपने बुरे दिनों में फादर लेबन्स अत्यंत दयनीय स्थिति में दिखाई पड़ते थे, बरामदे में अपने आप को घसीट कर चलाते थे, झुके हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते थे, डंडे के सहारे चलते हुए कुछ ही दूर में रुककर पूरी सांस लेने की कोशिश करते थे। जब उन्हें जोर से खांसी आने लगती थी तो वे तब तक वहीं रुके रहते थे जब तक कि खांसी नहीं चली जाती। जब खांसी से छुटकारा मिल जाती थी तो वे दीवार के सहारे अपने शरीर को शांत करते और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौटते थे। इधर बसंत की हवा ने उनमें भारत लौटने की उम्मीद बढ़ा दी थी। उन्होंने मई के पहले सप्ताह में कहा, यदि मैं चंगा हो जाऊंगा तो भारत में माता मरियम और संत जोसेफ के सम्मान में लिखवाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था तो वे बदलाव के लिए बेचैन होने लगे। वे दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लुबेन जाने का आग्रह किया। उन्हें वहां जाने की अनुमति मिल गई और वे 6 जून 1893 को लुबेन में पढ़ाई करने वाले जेसुइटों के आवास में लाए गए। यदि डॉक्टर के निर्णय ने फादर लेबन्स की उम्मीद खत्म नहीं की होती तो वे अंत तक सुधार की ही उम्मीद करते रहते। फादर लेबन्स ने लुबेन में डॉक्टर से सच्चाई जानने की जिद की। उन्होंने डायरी में डॉक्टर की बात लिखी, डॉक्टर जॉनसन्स कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता। दूसरे डॉक्टर और प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी यही वाक्य दोहराते थे। उससे सुनकर उन्हें किसी प्रकार की हैरानी नहीं होती थी। उन्होंने अपने एक मित्र से मजाक किया, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरह चल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे किंतु निश्चय ही शोधक अग्नि की ओर जा रहा हूँ। लुबेन में उनकी चंगाई की हर संभव कोशिश की गई, फल यह हुआ कि वे फिर एक बार सामुदायिक जीवन और मनोरंजन में भाग लेने लगे। ऐसा लगा कि वे मजबूत हो रहे हैं। लोग विस्मय करते हुए पूछने लगे, क्या वे ठीक हो सकते हैं? कोई मानवीय प्रयास उन्हें बचा नहीं सकता था, किंतु फादर लेबन्स बड़ी उत्सुकता से नए इलाज के लिए तैयार हो गए। बर्लिन के प्रोफेसर डॉक्टर कोस ने नया निदान अपनाया जिसके द्वारा लगा कि तपेदिक की बीमारी ठीक हो सकती है। इस निदान का प्रयोग अब तक बेल्जियम में नहीं किया गया था। डॉक्टर जानसेंस और डॉक्टर कोच एक दूसरे के संपर्क में थे। बर्लिन से दवाई मंगाई गई और फादर लीबन्स पर अजमाया गया। दवाई से हुई प्रतिक्रिया में प्रकट हुआ कि उन्हें तपेदिक है, किंतु उनके शरीर से बीमारी दूर नहीं हुई। डॉक्टर कोच का इलाज असफल हो गया था और इंजेक्शन थोड़े समय के लिए सहायक साबित हुआ। इसके बाद फादर लीबन्स की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। लोग उन्हें घर में अक्सर कॉलेज के गिरजाघर के बगल वाले प्रार्थनालय में बैठे हुए पाते थे। उनकी पीठ अधिक झुक गई और चलना भी मुश्किल होने लगा। उन्होंने अपने अंदर बीमारी का बढ़ना महसूस किया। उन्होंने कहा, मैं लगातार मौत जो मुझे ले जाना चाहती और जीवन जो फलदायक होना नहीं चाहता, इन दोनों के बीच संघर्ष कर रहा हूँ। फिर भी उनकी इच्छा शक्ति उन्हें आगे ले जा रही थी। इतनी दयनीय स्थिति के बावजूद मिशन के लिए उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई। लुबेन में उन्होंने लोरेटो की धम बहनों का इतिहास पढ़ा जो भारत में उनके मिशन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर लिखा गया था। उसमें उन्होंने महाधर्मदर्श पॉल गोथर्स, उराव नेता, सेंट जॉन्स स्कूल के युवा लीडर, मिशन के फादरों और ब्रदरों की चिट्ठी पढ़ी। तब उन्हें लगा कि काश मैं भी भारत में होता। जब मानवीय तरीके से स्वस्थ होकर भारत लौटने की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी, तब उन्होंने ईश्वरीय शक्ति से चंगा होने की याचना की। माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण महापर्व के दिन 15 अगस्त को उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है। उस दिन प्रातः उन्होंने क्रिस्त्याग चढ़ाया। पौत्र मिस्सा के अंत में उन्हें उनका कमरा पहुंचाया गया। वे अपने बेड पर लेट गए और लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे रखवाल दूत को मेरे लिए धन्यवाद की विनती करनी होगी। यह फादर लीबन्स का अंतिम मिस्सा बलिदान था। उसके बाद वे कभी मिस्सा नहीं चढ़ा पाए। उस दिन भी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार हेतु माता मरियम से प्रार्थना करने की प्रेरणा महसूस करता हूँ। मैं छोटा नागपुर में उनके सम्मान में एक बड़ा गिरजाघर बनवाऊंगा। ईश्वर की इच्छा पूरी हो। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटा नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
सांस सवेरे गाए मिलकर ईश का हम महिमा गान,
आओ मिलकर भेंट करें हम ईश पिता को तन और मन।
सांस सवेरे गाए मिलकर ईश का हम महिमा गान,
आओ मिलकर भेंट करें हम ईश पिता को तन।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक नए दौर की हवा। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, एक समय था जब हमारे समाज में परिवार की संरचना संयुक्त परिवार की थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखते थे। माता पिता अगर बाहर भी रहते तो परिवार के अन्य लोग बच्चों की पढ़ाई, उनके साथी संगति और उनकी अन्य समस्याओं पर नजर रखते थे। इस कारण जब वे युवा बनते थे तब तक तो वे पारिवारिक मूल्यों, आपसी समझ, भाईचारा, सहिष्णुता का ज्ञान परिवार से पा लेते थे। अब एकल परिवार होने की वजह से माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश में अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। माँ की ममता व स्नेह तथा पिता का अनुशासन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका रखते हैं। एक किशोर जब तक वयस्कता की कगार पर खड़ा होता है, उसे अपने माता पिता के नेतृत्व की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे 18 या 20 वर्ष के हो गए हैं, वे सब चीज खुद सुलझा सकते हैं। हालांकि माता पिता को बेवजह हस्तक्षेप भी नहीं करनी चाहिए। पर एक सूक्ष्म रेखा खींचना भी अनिवार्य है। अपने बच्चों की एकांतता का आदर करें। आजकल बच्चों का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना तो आम बात है, ऐसे में कई बार उन्हें सोशल मीडिया की लत भी लग सकती है। उनकी पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों की संगति, पॉकेट मनी के खर्चे वगैरह पर जरूर नजर रखें, और अगर उनसे गलती हो जाए तो माता पिता का फर्ज बनता है कि वे गलतियों को न छिपाएं, पर उसका सामना करते हुए उससे सीखने की प्रेरणा दें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है समता बोरे की लिखी नाटिका नए दौर की हवा।
मम्मी, ओ मम्मी, मेरा कमरा किसने जमाया?
मैंने। अरे कितना गंदा पड़ा था तुम्हारा कमरा, हा? 1 किलो निकली धूल उसमें से, समझ गया?
आपसे मैंने पहले भी कहा था ना, मेरे कमरे को हाथ ना लगाया करो, आपकी समझ में नहीं आता क्या?
अरे ये किस ढंग से बात कर रहे तू मुझसे, हैं? आने दे तेरे पापा को आज, फिर मैं बताती हूँ तुझे।
ये क्या बार बार पापा का डर दिखाती रहती हो आप? अब मैं बच्चा नहीं रहा, आखिर मुझे भी प्राइवेसी चाहिए।
अरे क्यों चिल्ला रहे हो दोनों, क्या ये लगा रखा है?
सड़क से ही दोनों की आवाजें आ रही हैं। अरे कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो।
अरे आप आज जल्दी आ गए क्या? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
तने, क्या बात थी जो तुम अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे?
पापा वो
चाहे जो बात हो, आइंदा मुझे इतनी तेज आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ गए? और सुनो, वो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कल तुम्हारे ट्यूशन वाले सर से मिलकर आऊंगा, पता तो लगे कि तुम्हें जोर से बोलना सिखा रहे हैं क्या। मत भूलो कि तुम 12th में हो, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा छोड़ो और पढ़ने में मन लगाओ, समझ गए कि नहीं?
जी पापा, ध्यान रखूंगा। क्या मैं अब जाऊं? हेलो, क्या रे, तूने तो आज मरवा ही दिया था। तुझे मैंने पहले भी कहा था कि तेरे सिगरेट के पैकेट तू मुझे मत दिया कर, आज तो मम्मी के हाथ पैकेट लगते लगते बचे। तू समझ सकता है, अगर मम्मी के हाथ पैकेट लग जाते ना तो पापा मेरा कोर्ट मार्शल कर देते। आज से अपने अपने सामान सब अपने घर में ही रखेंगे। और तुझे तेरी मम्मी से डर लगता है तो क्या मुझे मेरी मम्मी से डर नहीं लगेगा? क्या क्या कहा, मैं डरपोक हूं? अच्छा, खुद की हिम्मत है नहीं और मुझे? अरे ठीक है भाई, बड़े तो हो गए लेकिन फिर भी घर में। अच्छा तो सारा का सारा पैकेट मैं पी लेता और जो धुआं फैलता वो उसका क्या होता भाई? तू मुझे तो माफ कर यार। क्या क्या कहा, नीतू को बता देगा? अरे नहीं नहीं, मेरा दोस्त, प्लीज मेरा भाई है ना, प्लीज नीतू को मत बताना। अरे वैसे भी अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो किसी को दुश्मन की भला क्या जरूरत। अच्छा चल फोन रख। अरे भाई रख फोन, बैलेंस के लिए पैसे जोड़ना मुश्किल हो जाते हैं। शिट, बैलेंस खत्म हो गया।
मम्मी, ओ मम्मी। अरे सॉरी बाबा। मम्मी क्या नाराज हो?
अरे चल हट, तंग मत कर मुझे।
आप हंस भी दो ना प्लीज, ये हुई ना बात। अरे मम्मी आप भी ना समझती नहीं हो, मेरे नोट्स बुक्स ये सब मैं अपने हिसाब से रखता हूँ और फिर आप उन्हें उठाकर इधर उधर कर देती हो और वक्त पर मुझे मेरे नोट्स नहीं मिलते हैं। अरे आपको क्या पता पढ़ाई का मुझे कितना टेंशन है। अरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स कोई मजाक है क्या मम्मी? अब आप लोगों के जमाने में तो इतनी कंपटीशन होती नहीं थी।
अच्छा बाबा ठीक है, अब आगे से जब तू घर में होगा ना तभी तेरे सामान तेरे कमरे से इधर उधर करूंगी, साफ करूंगी। कहने का मतलब समझ रहा है ना? अब ये बता तू कुछ खाएगा? क्या बनाऊं मैं तेरे लिए?
मम्मी भूख तो नहीं है मगर एक वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना कि मुझे अपनी साइंस की एक नई गाइड खरीदनी है। अरे मम्मी पता है बच्चे कह रहे हैं कि पिछले साल सारे क्वेश्चंस उसी गाइड में से आए थे।
अच्छा तो वो कितने की है?
मम्मी 700 रुपए की।
अरे रुक 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 रुक, अच्छा ये ले, ठीक है। अरे कहाँ चला?
बुक लेने मम्मी। हाय कैसी हो?
ऐसे ही हो जैसे दिख रहे हो, बोलो कुछ काम था?
नहीं बस यूं ही तुमसे।
ओ हेलो, मैं यूं ही किसी से बात नहीं करती हूँ। चलो निकल लो आगे, बढ़ लो।
हेलो नीतू, नहीं तो प्लीज फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। और सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नीतू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
अच्छा, तो क्या करूँ, नाचू? देखो, फालतू बातें मुझे पसंद नहीं, आइंदा से फोन मत लगाना मुझे।
हे, इतना रूड बिहेव क्यों करती हो? सुनो, मुझे पता है अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें, जो बोलोगी वह लाके दूंगा।
गिफ्ट? मेरी पसंद का गिफ्ट तुम्हारे जैसों की बस का नहीं मिस्टर। अरे पहले अपने करियर पर ध्यान दे दो, पैसे कमाओ, ये गिफ्ट विफ्ट उसके बाद की बात है, समझे ना? चलो ओके बाय। अरे तने, ये तेरे कपड़ों में टी शर्ट मिला है, कहाँ से आया? मैंने तो नहीं खरीदा है, किसी ने दिया है क्या तुझे?
अरे मम्मी, कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को मेरी अलमारी को मत छुआ करो, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या?
ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सच सच बताओ ये क्या चल रहा है? बहुत दिन हो गए, आजकल तुम मुझसे पैसे भी नहीं मांगते हो, घर पर भी कम ही रहते हो, और पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। देख तने, तू ठीक ठीक बता दे मुझे, वरना मैं तेरी फिर से शिकायत करूंगी पापा से, समझ गया?
मम्मी, वह बात यह है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा हूँ, इससे मुझे बार बार आपसे पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और मैं अपनी जरूरतें भी पूरी कर लेता हूँ।
हेलो तने, तुम्हारे ना मैसेज मिले, क्या ड्रेस लेके आ रहे हो? हाँ, और मोबाइल भी है? अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, जगह बता दो मुझे कहाँ आना है, ठीक है ना? तो फिर परसों मिलते हैं, ओके बाय बाय। अरे आ रही हूँ बाबा, पता नहीं कौन है। पुलिस जी कहिए।
मिस्टर तनय कौन है?
जी मैं हूँ।
और मैडम आप इनकी मम्मी हैं?
हाँ जी।
देखिए मैडम, मेरे पास मिस्टर तनय का वारंट है।
क्या कह रहे हैं?
जी, इन पर आरोप है कि ये दूसरों के अकाउंट हैक करके चोरी करते हैं।
जी नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है।
मैडम बात सुनिए, बिना सबूत के हम कोई कार्रवाई नहीं करते, सबूत है तभी वारंट लेकर आए हैं।
सर देखिए, वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और बहुत छोटा है, उसी हिसाब से उसको किसी चीज की समझ नहीं है सर।
अभी पता चल जाएगा। मिस्टर तनय, क्या ये सच है? बोलिए, क्या ये सच है?
नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
नहीं पता? बताइए, बताओ।
अरे बोलता क्यों नहीं है तू?
मम्मी दरअसल बात यह है कि मुझे जब पैसों की जरूरत थी तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, उससे हमें पैसे मिल जाएंगे, और मैं उनकी बातों में आ गया।
सुना मैडम? अब यकीन हुआ ना आपको कि आपका बेटा क्या गुल खिला रहा है?
हाँ सर, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला सर कि बच्चे ऐसा करते हैं।
देखिए मैडम, ये केवल मिस्टर तनय की बात नहीं है, ये आज का दौर ही ऐसा है, सब जगह ये हवा चली हुई है, और इस मामले में जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी, वरना आज की पीढ़ी पता नहीं क्या होगा इसका।
हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर।
आज तो मैं छोड़ देता हूँ
जी सर,
लेकिन मिस्टर तनय, आइंदा अगर कोई शिकायत आई तुम्हारी तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा।
जी सर।
ठीक है मैडम।
नए दौर की हवा। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से ये नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे भवानी कौल, राहुल तिवारी, संतोष जोशी और समता बोरेकर। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।